ओम शांति। श्रीमद् भगवद् गीता के अब तक के अध्याय में हम सभी ने देखा कि किस प्रकार अर्जुन की एक मनोदशा थी, कैसे कैसे सवाल उसके मन के अंदर उत्पन्न हो रहे थे और भगवान एक एक सवाल का जवाब उन्हें दे रहे थे। साथ ही उसके मन के अंदर जो अज्ञान था उस अज्ञान को भी दूर कर रहे थे। अज्ञान जो था परमात्मा का स्वरूप के विषय में, तो वो स्वरूप भी कैसे स्पष्ट किया। परमात्मा ने इस संसार की 81 श्रेणियों के अंदर जो उत्कृष्टता थी उसकी तुलना अपनी विशेषताओं से किया, परंतु फिर भी वो संपूर्ण रूप से परमात्मा की असीम विभूति को स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। और इसीलिए जब इतनी सुंदर बातें अर्जुन ने सुनी तब उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि क्या वो स्वरूप मेरे द्वारा देखे जाना संभव है। और तब परमात्मा ने उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान किए और वो दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराया। जिस दिव्य स्वरूप को देख करके उनके मन की कई प्रकार की भ्रांतियां समाप्त हो गई, मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा भावना और बढ़ गई, और उसके बाद जो उनके प्रश्न रहे वो प्रश्न भी बदल गए। अब जो प्रश्न कर रहा है वो जिज्ञासा वाले प्रश्न है, जीवन के अंदर उन्नति को प्राप्त करने के लिए प्रश्न है, पुरुषार्थ में सहजता कैसे ले आए उसके प्रश्न है। और साथ ही साथ भगवान से भी क्षमा याचना मांगी कि हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर देना। और उसके बाद जो प्रश्न हुए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में, प्रकृति के तीन गुणों को किस तरह से मनुष्य जीवन में प्रभावित होते हैं, सात्विक राजसिक तामसिक। सात्विक लोगों की जीवन शैली कैसी होती है, राजसिक लोगों की जीवन शैली कैसी होती है और तामसिक लोगों की जीवन शैली कैसे होती है, इन सब बातों को स्पष्ट करके पुरुषोत्तम योग को भी वर्णन किया कि कैसे ये संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसका बीज स्वयं परमात्मा ऊपर है और सारा वृक्ष नीचे फैला हुआ है, और ये शाखाओं में भी कैसे प्रकृति के तीन गुण प्रभावित करते हैं। और फिर जब एकदम जड़जड़ीभूत अवस्था हो जाती है इस कल्प वृक्ष की, तो परमात्मा उस आदि पुरुष के रथ का आधार लेकर के वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा इसकी जड़ों को काट करके पुनः एक नए वृक्ष का प्रारंभ करते हैं। इस तरह गुह्य गोपनीय ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया। और अब 17वां-18वां अध्याय जो है वो सारी गीता का निचोड़ है, सार है, कि जब भगवान अर्जुन को वो आईना दे देते हैं, या यूं कहे कि हम सभी आत्माओं को वो आईना मिल जाता है कि हमारे अंदर कौन सी प्रकृति के गुणों का प्रभाव है, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। प्रकृति के प्रभाव से चलने वालों के बुद्धि कैसी है, उनके जीवन की धारणा शक्ति कैसी है, उनके जीवन के कर्म कैसे हैं, उनके जीवन में सुख कैसा होता है, यज्ञ कैसा करते हैं, दान कैसा करते हैं, इन सब बातों को लेकर के स्पष्ट किया गया है। इसलिए कहा कि ये एक प्रकार का आईना है कि जो आईना हम लोगों को भी स्पष्टीकरण कर देता है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, किस तरह की जीवन शैली को अपनाना है। तो श्रद्धा के विभाग 17वें अध्याय के अंदर इसमें आहार, यज्ञ, कर्म, तप, दान के प्रकार बताए हैं तथा प्रकृति के तीनों गुणों का मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है। और इस तरह अर्जुन का सवाल भगवान से कि जो मनुष्य ज्ञान रहित है, जिसमें ज्ञान नहीं है, और श्रद्धा युक्त होकर यज्ञ कर्म करता है, श्रद्धा भावना जरूर है लेकिन ज्ञान नहीं है, क्या उनकी निष्ठा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। तो भगवान कहते कि हे अर्जुन, सभी मनुष्य की श्रद्धा उनके स्वभाव संस्कार के अनुरूप ही होती है। जैसे जिसका स्वभाव संस्कार है उसी अनुसार उसकी श्रद्धा भी होती है। ये नहीं कि भई किसकी ज्ञान नहीं है लेकिन श्रद्धा अधिक है, नहीं, जितना जिसमें ज्ञान है उसी अनुसार उसकी श्रद्धा होती है। जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा ही उसका स्वरूप होता है। सात्विक प्रकृति के लोग, जैसे पहले भी बताया, देवताओं को पूजते हैं, राजसिक लोग यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, और तामसिक लोग प्रेत और भूतों को पूजते हैं। जैसी जिसमें श्रद्धा होगी वैसा ही पूजन करेंगे। ये मिसाल एक भगवान ने दिया, भाई उसकी श्रद्धा देवताओं में है ही नहीं, तामसिक प्रकृति के लोगों की, उनकी श्रद्धा ही भूत प्रेतों में है कि वो मेरा काम सही कर देंगे। भगवान मेरा काम सही करेंगे, देवताएं मेरे काम सही करेंगे, ये श्रद्धा ही नहीं है उनकी। उनकी श्रद्धा क्या है कि ये भूत प्रेत ही मेरा काम ठीक कर लेंगे, इसीलिए वो उनकी आराधना ही करते हैं, वो देवताओं की आराधना करते ही नहीं है। तो जैसा जिसका स्वरूप वैसी उसकी श्रद्धा है ना, जितना जिसमें ज्ञान है उसी अनुसार उसकी श्रद्धा होगी। फिर भगवान कहते, ज्ञान रहित आराधना में अज्ञान, अहंकार, कामना और राग समाया होता है। वे सर्व को कष्ट पहुंचाने वाले अविवेकी होते हैं, उन्हें आसुरी निश्चय वाले ही जानो, जो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तो वो आसुरी निश्चय वाले ही जानो। वे अपनी अपनी प्रकृति अनुसार ही आहार स्वीकार करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, अब उनका भेद सुनो। तो सबसे पहला है आहार, कि सात्विक प्रकृति के लोगों का आहार कैसा होता है, राजसिक प्रकृति के लोगों का आहार कैसा होता है। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, तो मन के अंदर कितनी श्रद्धा है आहार से पता चलती है। तो सात्विक मनुष्य का आहार कैसा होता है, आयु, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य, सुख, सात्विकता तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। राजसिक मनुष्य का आहार कैसा होता है, तीखा, खट्टा, खारा, बहुत गर्म, चटपटे, रूखे, दाहकारक, ऐसे होते हैं। और ऐसे आहार दुख, शोक तथा रोग को उत्पन्न करने वाले होते हैं। और जो तामसिक मनुष्य का भोजन है वो कैसा होता है, नीरस, दुर्गंधित, बासी, जूठा व अपवित्र होता है। ये भोजन है तामसिक लोगों का। इसलिए कहा अब आईना मिल रहा है कि हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम किस प्रकृति में आते हैं। उस हिसाब से हमें ये अभी देखना है कि हमें कहां जाने का प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ किस दिशा की ओर करना है ना? मुझे याद आता है कि ब्रह्मा बाबा हमेशा जब भी साकार में थे तो इतने बच्चे बाबा के सामने आते थे, और आप लोग ने भी ये 3 दिन में अनुभव किया होगा कि कभी आपको दोपहर की चीज रात को सर्व नहीं की गई, या रात की चीज सुबह नाश्ते में चाहे दूसरा कुछ बना करके उसी का ही मेकअप करके बना करके सर्व किया जाए, नहीं किया गया। बाबा का मानना था ये, और इसीलिए हमेशा बाबा बच्चों के लिए फ्रेश बनवाते थे। जो बचा हुआ होता था वो गायों को दे खिला देते थे, या माना उसी दिन समाप्त कर देना है, दूसरे दिन के लिए रखना नहीं है। क्योंकि रात भर जो भोजन रहता है उसमें इतने प्रकार के वाइब्रेशंस जाते हैं, और सुबह अगर उसको खिलाया जाए तो किस प्रकार की उसकी बुद्धि बन जाती है। इसीलिए बाबा यही कहते थे कि आध्यात्मिक उन्नति जहां करने की बात आती है वहां रात का भोजन कभी स्वीकार नहीं करना है। न खुद करते थे न किसी को करने देते थे, गायों को खिला देते थे। बाबा के पास में बहुत गायें होती थी, आज भी अपने पास बहुत गायें हैं, तो गायों को खिलाया जाता है लेकिन बच्चों को कभी नहीं खिलाया जाता है। तो रात भर का पड़ा हुआ भोजन ये तामसिक बाबा कहते थे। पहली बात बाबा यही कहते थे कि बच्चे तुम्हारा योग इतना एक्यूरेट होना चाहिए जो ज्यादा बनना ही नहीं चाहिए, जो फेंकना पड़े उसको या किसी को ढूंढना पड़े खिलाने के लिए, है ना, बनाओ ही इतना एक्यूरेट जो पूरा हो जाए। वो तभी होगा जब ईश्वर के साथ हमारा योग होगा तो एक्यूरेट बनेगा, है ना। लेकिन अगर बुद्धि ही अगर ठीक नहीं होगी तो एक्स्ट्रा बन जाएगा, माप का हिसाब नहीं रहेगा, ज्यादा बना देंगे, फिर फेंकना पड़ता है, फिर ढूंढना पड़ता है। बाबा कहते थे ये तामसिक भोजन है, और इसीलिए आपने 3 दिन में अनुभव किया होगा कि चाहे 1000 लोग थे एक्यूरेट बनता था, जो बचता था वो सर्वेंट्स को उसी दिन रात तक पूरा कर देना, उसको दूसरे दिन तक आगे चलाना, ये बाबा का प्रिंसिपल ही नहीं था। बासी खाने से बुद्धि बासी हो जाती है, बुद्धि की प्रगति क्रिएटिविटी नष्ट हो जाती है, ये बाबा का मानना था। तो ये गीता से बाबा ने ये बात को लिया था। ये बाद में हम लोगों को पता चला कि कैसे भगवान वाच जो थे, भगवान ने ये बात सुनाई थी, इसलिए ब्रह्मा बाबा के जीवन के आचरण में उन बातों को हमने देखा कि सात्विक भोजन न तीखा न खट्टा, ये आप लोग ने भी अनुभव किया होगा कि कोई ऐसा चटपटा वाला खाना, तीखा एकदम मिर्च मसाला वाला हो, ऐसा नहीं होता है यहाँ खाना, क्योंकि ये सात्विक भोजन नहीं है। और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए जितना सात्विक भोजन होगा उतनी बुद्धि की तेजस्विता बढ़ती जाती है। उसके बाद दूसरा है तीन प्रकार के यज्ञ कर्म, तो जिसमें फल की इच्छा नहीं और जो विधि पूर्वक कर्तव्य समझकर निश्चयात्मक बुद्धि से होता है वे यज्ञ सात्विक है। जो भौतिक लाभ के लिए या दंभ से होता है ऐसा यज्ञ राजसी है, और जिसमें विधि ही नहीं है, लोक कल्याण की भावना नहीं है, त्याग नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ऐसा यज्ञ तामसी है। तो ये तीन प्रकार के यज्ञ कर्म स्पष्ट किए। उसके बाद तपस्या तीन प्रकार की, के देव, द्विज, गुरु और ज्ञानी जनों की आराधना, बाह्य शुद्धि, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा इत्यादि शरीर संबंधी तपस्या है। ये शरीर के संबंध में तपस्या है, आराधना करना, बाह्य शुद्धि को अपनाना, अर्थात जब भी शौच जाते हैं तो स्नान कर लेना, बाह्य शुद्धि, सरलता हो जीवन के अंदर, ब्रह्मचर्य व्रत हो और अहिंसा हो, ये शरीर संबंधित तपस्या है। जो वाक्य सच्चे, प्रिय, हितकर, ज्ञान युक्त, मधुर है, ऐसे वाक्य वाणी का तप है, ये वाणी की तपस्या है। और मन की प्रसन्नता, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम और अंतकरण की शुद्धि ही मन की तपस्या है। तो मन, वचन और शरीर तीनों की तपस्या कैसी होती है इसको स्पष्ट किया। इसमें भी सात्विक तपस्या किसको कहते, राजसिक किसको कहते और तामसिक किसको कहते, इसको स्पष्ट करते हैं कि ये तीनों तप में जब भौतिक फल की इच्छा नहीं होती है लेकिन केवल ईश्वर अर्पण भाव परम श्रद्धा से संपन्न है वह सात्विक तपस्या है। परंतु जब तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, ऐसी तपस्या अनिश्चित, क्षणिक और राजसी है। जहां इच्छाएं हैं, सम्मान सत्कार प्राप्त करने की इच्छा रहती है और जो तपस्या करते वो राजसी तपस्या है। और जो तप कष्ट उठाकर, दुराग्रह पूर्वक और दूसरों के नाश के लिए होता है वह तप तामसी है, वह तामसी तपस्या है। जहां दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए कई लोग कोई व्रत करते हैं या इस तरह का तपस्या करते हैं जिसमें कल्याण की भावना नहीं है, तो वह तामसी तपस्या है। और इस प्रकार दान, तीन प्रकार के दान है, इस प्रकार दान देना कर्तव्य है। परंतु जो दान उचित समय और स्थान देखकर योग्य पात्र को दिया जाता है, जिसमें प्रतिउपकार की अपेक्षा नहीं होती है, वह दान सात्विक माना जाता है। और जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के उद्देश्य से और फल की कामना रखकर दिया जाता है, कुछ प्राप्त करने की कामना के साथ दिया जाता है, वह दान राजसी है, और जो दान बिना सत्कार किए, सामने वाले का सत्कार भी नहीं, तिरस्कार पूर्वक अपवित्र स्थान अनुचित समय पर कुपात्रों के लिए दिया जाता है, वह दान भी तामसी है। तीनों प्रकार के बाबा हमेशा दान के लिए भी यही कहता था कि दान जो करे ये हाथ को पता न चले। गुप्त दान महापुण्य कहा जाता है, और इसीलिए आपने यहां देखा होगा, अनेक आश्रमों में आप सभी गए होंगे, यहां पर आपको कहीं पर भी वो दान पेटी देखने को नहीं मिली, क्योंकि बाबा का ये मानना था, ये बाबा के जीवन का सिद्धांत था कि मांगने से मरना भला। हमारा किसी के सामने हाथ फैलाना कि यहां ये दान करो, इतनी मेंबरशिप करो, आप ये करो, नहीं। बाबा कहते थे बाबा के बच्चे हैं, ये भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चों की पहले सेवा करनी चाहिए। बाबा ने हमेशा हम बच्चों को यही सिखाया कि किसी की सेवा लेने का अधिकार, दान लेने का अधिकार, सेवा लेना माना दान लेने का अधिकार तभी होता है जब पहले आप उनकी सेवा करो। जब तक आप उनकी सेवा नहीं करेंगे और वो दान लिया तो वो एक बोझ होगा, इसलिए ऐसा बोझ स्वयं के ऊपर नहीं चढ़ाना है। तभी कहा कि पहले सेवा करो, पीछे आप सेवा ले सकते हैं, तब तक सेवा लेने का अधिकार नहीं है। तब तक वो दान लेना माना एक बोझ अपने ऊपर। इसीलिए आपने 3 दिन में ना आपको सेंटर से किसी ने कहा होगा, ना आपको यहां किसी ने कोई लेक्चर में कोई इशारा भी दिया हो कि भाई आप किसी न किसी रूप से भाई इतना दान करो, कभी नहीं। ये बाबा का सिद्धांत ही नहीं था, क्योंकि गीता में ये बात कही हुई है कि सात्विक दान भी किसको कहा जाता है। और इसीलिए देखा गया है कि आज ये सारी दुनिया के अंदर अगर लार्जेस्ट लेडीज मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, उसका कारण यही है कि बाबा के जो सिद्धांतों को पालन किया है, अभी तक भी वो सिद्धांत है। बाबा के जाने के बाद भी भले आज 44 इयर्स होने को आए, लेकिन 44 इयर्स से भी बाबा के जो बनाए हुए सिद्धांत है, सारी दिनचर्या जो है सुबह अमृत वेले से रात्रि तक की, वो पूरी दिनचर्या जो सात्विक रूप से बाबा ने बना के दी है, उसी रूप से चलती है। और इसीलिए आज अभी तक भी इसकी इतनी प्रगति देख रहे हैं सारे संसार के अंदर। तो ये बाबा ने जो बातें सिखाई है, प्रैक्टिकल यही कहो कि बाबा गीता का अध्ययन शुरू में इतना करते थे, और वो गीता को उन्होंने जीवन में उतारा था, और इसीलिए आज इतने भाई बहनों के लिए बाबा आदर्श बन गए, क्योंकि बाबा का जीवन ही ऐसा था कि बाबा ने जो बातें की प्रैक्टिकल खुद करके फिर सिखाई बच्चों को। तो ये बाबा के जीवन की धारणाएं थी। और फिर 17वें अध्याय के अंत में ओम तत्सत का अर्थ बाबा भगवान बताते हैं कि ओम माना अहम आत्मा, तत् माना समस्त तत्व, और सत माना उन समस्त तत्व में भी सत्य भाव, श्रेष्ठ भाव, दृढ़ भाव को धारण करना है। यानी मैं आत्मा समस्त तत्वों के सहित स्वयं में सत्य भाव, श्रेष्ठ भाव और दृढ़ता का भाव मैं आचरण में लाती हूं। यह है ओम तत् सत। और फिर 18वें अध्याय में सन्यास की भी सिद्धि बताई है, और आईना क्लियर हमारे सामने करते हैं कि त्याग का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। इस अध्याय में वर्णित संकेत हमारे आंतरिक व्यक्तित्व का बोध कराता है। समय प्रति समय हम इन सूचकों के आधार पर अपने व्यक्तित्व का अवलोकन करें तथा देखें कि वह सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, और स्वयं को परिवर्तन करें। श्रीमद् भगवद् गीता की महिमा तथा उसके चरम निष्कर्ष को समझाते हैं कि धर्मों का सर्वोच्च मार्ग परमात्मा की शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य आत्मा को वापस जाने की शक्ति प्रदान करता है। इस संसार से कैसे जाना है उसकी शक्ति प्रदान करती है। तो इसीलिए ये पुनः अपने आप को देखने का एक आईना है, जो श्लोकों में अलग अलग समय पर कहा। तो अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, सन्यास और त्याग का यथार्थ स्वरूप क्या है? सन्यास और त्याग दोनों एक है, अलग है, कैसे, क्या है? कहीं के मन में सवाल होगा, सन्यास करना चाहिए या त्याग करना चाहिए, क्या करना चाहिए? भगवान ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। त्याग तीन प्रकार के हैं, यज्ञ, दान और तप। ये कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है। न जीवन शुद्धिकरण की बातें जो है, यज्ञ माना जीवन को शुद्ध करने की बातें, दान करना और तपस्या करना, ये कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं। जो नियत कर्म को कर्तव्य समझकर इसमें आसक्ति और फल को त्यागता है, जो कर्म आप करो उसमें आसक्ति और फल को त्याग दो, वह सात्विक त्याग कहलाता है। और जो नियत कर्म को दुख समझकर या शारीरिक कष्ट के भय से त्याग करता है, वह राजसिक त्याग है। जैसे भाई धूप में जाना है बाहर में, तो समझते हैं दुख मिलेगा, शारीरिक कष्ट होगा, तो छोड़ दो जाना। फिर कहेंगे हमने त्याग किया, दोपहर में हम कहीं बाहर नहीं गए, कहीं घूमने नहीं गए। अब ये राजसिक त्याग हो गया कि भाई जहां कष्ट था तो इसलिए छोड़ दिया वो चीज, तो उसको त्याग नहीं कहा जाता है, वो राजसिक त्याग है। और जो नियत कर्म और जिसमें फल की प्राप्ति नहीं होती है, और जो नियत कर्म को मोहवश त्याग करता है, वह तामसी त्याग है ना, वह त्याग तामसी हो जाता है। नियत कर्म है लेकिन मोहवश त्याग किया। आज जैसे मां है, अपने बच्चे में मोह है, और उस मोह के कारण अगर उसने रात भर जागा, तो ये नींद का त्याग जो उसने किया वो मोह के कारण किया। तो मोह के कारण जो त्याग हुआ वो तो तामसी त्याग, उसमें प्राप्ति नहीं है, फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए पहले ही कह दिया, जिसमें फल की प्राप्ति नहीं होती है और जो नियत कर्म को मोहवश त्याग करता है, तो वह तामसी त्याग है। संपूर्ण कर्म का त्याग संभव नहीं है, परंतु जो कर्म फल त्याग करता है वह शुद्ध संन्यास है। कर्म फल, फल की इच्छा नहीं रखो। बार बार गीता के अंदर भगवान ने यही अर्जुन को कहा, कर्म करते जा, फल की इच्छा नहीं रखो, तो ये शुद्ध सन्यास भी है। इसे सन्यास की चरम उत्कृष्ट अवस्था कहते हैं। ये सबसे ऊंचे से ऊंची अवस्था है, ये सन्यास है, कर्म फल का त्याग करना। कोई गृहस्थ व्यवहार कर्तव्य जिम्मेवारी को छोड़ना, ये नहीं बताया गीता में कहीं पर भी भगवान ने अर्जुन को। लेकिन कर्म करो, फल की इच्छा न रखो, ये शुद्ध सन्यास है, और इसे सन्यास की चरम उत्कृष्ट अवस्था कहते हैं। फिर ज्ञान तीन प्रकार का बताया। जिस ज्ञान के द्वारा अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में आध्यात्मिक प्रकृति को देखते हैं, वह ज्ञान सतोगुणी है। ज्ञान हमारी दृष्टि को परिवर्तन कर देता है, जो हर एक में आत्मभाव को जागृत करता है। हर एक को जब देखते हैं तो शरीर के भान से नहीं देखते, लेकिन आत्मा के भाव से देखते हैं, आध्यात्मिक प्रकृति को देखते हैं। वह ज्ञान सतोगुणी है। और जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में भिन्न प्रकार के अनेक भावों को लेकर जानता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ज्ञान रजोगुणी ज्ञान है। और जो ज्ञान शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने तक सीमित है, नहीं पैसे कमाना है हमको तो अपनी रोजी रोटी के बारे में, तो जो अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने तक सीमित है और उसे ही सब कुछ मान सत्य को जाने बिगर उसमें लिप्त रहते हैं, यह ज्ञान तमोगुणी है। यह ज्ञान तमोगुणी है। और फिर भगवान कर्म के तीन प्रकार बताते हैं। आईना है ना, ये आईना हर एक अपने आप में देख सकता है कि हमारे कर्म कैसे हैं, दान कैसे हैं, भाव कैसे हैं। तो जो यज्ञ कर्म है और आसक्ति राग द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता, वह सात्विक कर्म है। जो कर्म परिश्रम और अहंकार युक्त है तथा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है, वह रजोगुणी कर्म है। और जो कर्म परिणाम हानि और अपने सामर्थ्य को न देखकर बिना विचारे मोह व अज्ञान वश किया जाता है, वह तामस कर्म है। जहां सोच समझ के नहीं करते हैं, बाद में पश्चाताप, तो तामसी कर्म हो गया। जहां अपनी स्वार्थ पूर्ति है वो राजसी कर्म हो गया। और जहां कोई फल की इच्छा नहीं है वो सात्विक कर्म हो गया। और इस प्रकार कर्ता के तीन प्रकार है, करने वालों के अंदर भाव जो है वो भी तीन प्रकार के हैं। जो व्यक्ति संग दोष से मुक्त, अहंकार रहित, दृढ़ संकल्पधारी और उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता असफलता में अविचलित रहता है, वो सात्विक कर्ता है। बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें अहंकार नहीं, दृढ़ संकल्पधारी उत्साह वाला है, सफलता असफलता में अविचलित रहता है, वो सात्विक करता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होता है, वह राजसी करता है। जो विचलित हो जाता है, जहां ईर्ष्या है, अपवित्रता है, लोभ है, ये राजसी करता है। और जो करता ज्ञान के विरुद्ध कार्य करता है, चंचल चित्त वाला, असभ्य, घमंडी, द्रुत, दूसरों के कार्य में बाधा पहुंचाने वाला, सदैव खिन्न, आलसी तथा दीर्घ सूत्री है कि फिर कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, हो जाएगा, वह कर्ता तामसी करता है। इसी प्रकार कर्ता की बुद्धि तीन प्रकार की है, भाव तीन प्रकार के करने वालों के मन के अंदर, अब बुद्धि तीन प्रकार की है और धारणा शक्ति भी तीन प्रकार की है। तीनों की बुद्धि के तीन प्रकार है कि जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय तथा बंधन और मुक्ति को यथार्थ समझते हैं, वह सात्विक बुद्धि है। वह अच्छी तरह से भेद कर सकती है, सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन जो धर्म अधर्म तथा कर्तव्य कर्तव्य के भेद को यथावत नहीं जानते हैं, वह राजसी बुद्धि है, और जो अज्ञान अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानते हैं और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करते हैं, वे तामसी बुद्धि है। जो भेद को अच्छी तरह जानते हैं वो सात्विक है, जो भेद को नहीं जान पाते वो राजसी है, और जो विपरीत दिशा में चलते हैं वो तामसी बुद्धि है। इसी प्रकार उनकी धारणा शक्ति भी तीन प्रकार की है। तो जो योग अभ्यास द्वारा अव्यभिचारिणी धारणा से अपने मन, प्राण और इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखता है वह सात्विक धारणा है। और जिस धारणा से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी धारणा है। जहां अपने मन, प्राण तथा इंद्रिय के कार्यकलापों को वश में रखता है वो धारणा सात्विक है, जहां योग अभ्यास द्वारा अव्यभिचारिणी बुद्धि एक में लगी हुई है, और जहां मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वो राजसी धारणा है। और दुर्बुद्धि पुरुष जिस धारणा के द्वारा स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं त्यागता है वह धारणा तामसी है। तो ये तीन प्रकार की धारणा शक्ति बताई उनकी। फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब तीन प्रकार के सुख का वर्णन सुन। ये तीन प्रकार के सुख भी होते हैं जिसमें रमण करने से मनुष्य प्रसन्न रहता है और जिससे दुख का अंत होता है। जो सुख आरंभ में विष के समान लगता है, कि जिसके अभ्यास में कठिनाई है, ऐसे अनुभव होता है, परंतु परिणाम में अमृत के समान है, वह आत्म स्वरूप में समाहित बुद्धि प्रसन्नता, निर्मलता, स्थिरता का सुख अनुभव करती है, वह सुख सतोगुणी है। मिसाल के रूप में सुबह 4 बजे उठना थोड़ा कष्टपूर्वक लगता है ना? 4 बजे, अरे आधी रात में जैसे जगा दिया हो, 3:30 बजे उठना है, बड़ा कष्ट महसूस होता है। तो जो आरंभ में, जो सुख आरंभ में थोड़ा विष के समान, यानी जिसमें, जिसके अभ्यास में कठिनाई महसूस होती है, लेकिन उसके परिणाम में अमृत है, तो वो सुख सात्विक है, जिसमें बुद्धि की प्रसन्नता, निर्मलता, स्थिरता अनुभव होती है। और जो सुख विषयों तथा इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है वह प्रथम तो अमृत समान लगता है, परंतु परिणाम में विष तुल्य होता है, वह सुख राजसी है। और जो आत्म उन्नति के प्रति अंधा, प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहग्रस्त है, और जो आलस्य, निद्रा और प्रमाद से उत्पन्न है, भई 8 बजे तक, 9 बजे तक सोए रहो, आलसी की तरह भले पड़े रहो, तो वह सुख तामसी है। तो इस प्रकार के, तीन प्रकार के सुख का वर्णन सुना, तभी कहा आईना है ना, ये अपने जीवन शैली को देखने का एक आईना नहीं है, आईना मिला हुआ है ना ये। और इस तरह भगवान फिर कहते, पृथ्वी पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। जैसा जिसका स्वभाव हो जाता है, जो प्रकृति के आधार पर वो कार्य करते हैं, उसके आधार पर भेद बन जाता। पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग के देवताओं में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से मुक्त हो। देवताएं भी मुक्त नहीं, वो सात्विक प्रकृति से है, लेकिन है तो प्रकृति के गुणों के प्रभाव में ही, चाहे वो देवता है चाहे असुर है। इस संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं जो प्रकृति के उत्पन्न इन तीनों गुणों से मुक्त हो, कोई उससे सिवाय परमात्मा के, कोई उससे मुक्त नहीं है। फिर भगवान कहते हैं, अपने स्वभाव एवं विकास की स्थिति को पहचान कर प्रत्येक व्यक्ति ने अपने स्वाभाविक कर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए, परंतु इसमें ईश्वर अर्पण भावना से कार्य करने में अहंकार सर्वथा लुप्त हो जाता है। जब ईश्वर को समर्पित कर दो जो कर्म करते हैं, तो अपना अहंकार उसमें समाप्त हो जाता है। अहंकार के अभाव से पूर्वाजित वासनाओं का क्षय होता है और नवीन बंधन कारक वासनाएं उत्पन्न नहीं होती है। अहंकार ही जड़ है सभी प्रकार की बुराइयों को उत्पन्न करने के लिए। उसके अतिरिक्त चित्त की शुद्धि भी प्राप्त होती है। जिसका अंतकरण शुद्ध होता है वह परमात्मा के दिव्य स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर सकता है। परमात्मा अनुभव प्राप्त करने के लिए अंतकरण शुद्ध होना बहुत जरूरी है। यही वास्तविक सिद्धि है। सिद्धि की बात जब उसने पूछी तो यही वास्तविक सिद्धि है। फिर भगवान और उसको स्पष्ट करते हैं, सर्वोच्च सिद्ध अवस्था अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त करने वाले के लक्षण क्या होते हैं, कैसे उस सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकते, उसके लिए उसके लक्षण कैसे होने चाहिए। तो अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो अल्पाहारी है, जो अपने शरीर मन वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः विरक्त मिथ्या अहंकार मिथ्या शक्ति मिथ्या गर्व काम क्रोध तथा भौतिक वस्तु के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। ये उनके लक्षण है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को अनुभव कर प्रसन्न हो जाता है। वह न शोक करता है, न किसी की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रखता है। ये उसके लक्षण है। और फिर ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है, अर्जुन का और एक सवाल कि ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है, तो भगवान कहते हैं, भगवान जो है और जिस प्रभाव वाले हैं, अजर अमर शाश्वत, जिन अलौकिक गुण धर्म वाले हैं, उसे परिपक्व अवस्था वाले यथार्थ जान लेते हैं। उसके मन के अंदर कोई डाउट नहीं रहता है, ये है पता नहीं, ये हो सकता नहीं हो सकता, हमने तो कभी आज दिन तक ये डाउट्स ही नहीं, संशय नाम की चीज नहीं रहती है, क्लियर हो जाता है उसके अंदर। भगवान जो है, जैसा है, जिस अलौकिक गुण धर्म से है, युक्त है, वो परिपक्व अवस्था वाले यथार्थ जान लेते। और वह भगवान का आश्रय लेने वाला पुरुष संपूर्ण कर्म को सदा करते हुए ईश्वरीय कृपा में सदा रहने वाले अविनाशी पद को प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों को मन से मुझ में अर्पित करके बुद्धि योग मुझ में स्थित करो। अब बुद्धि को इधर उधर भटकाने की जरूरत नहीं, अब मुझ में स्थित करो। इस प्रकार मुझ में निरंतर चित लगाने वाला मेरी कृपा से सर्व विघ्नों को पार कर लेगा, परंतु यदि अहंकारवश तुम मेरी मत नहीं सुनोगे, अहंकार अगर आ गया और भगवान की मत को नहीं सुना, तो नष्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति, ये कोई श्राप नहीं है भगवान का, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति यानी संस्कार तुम्हें प्रवृत्त होने के लिए मजबूर करेगी। जो आसुरी संस्कार है, तामसी संस्कार है वह तुम्हें मजबूर करेंगी उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। अहंकार है ना, तो अहंकार वाले संस्कार किस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगी? वो भगवान की शरण में तो आ नहीं सकता है, तो फिर वो नष्ट हो जाती। ये भी एक ये गति बताई है भगवान ने, ये कोई श्राप नहीं है। इसलिए हे भारत, भारत जब भगवान कहते हैं अर्जुन को बार बार, तो वहां हर एक भारतवासी को देखते हुए भगवान कहते हैं, इसलिए हे भारत संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की शरण ग्रहण करो, उसकी कृपा से परम शांति को प्राप्त करोगे। इसलिए भगवान की शरण में आना है ताकि संपूर्ण रूप से परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक बहुत सुंदर बात भगवान ने यहां कही है कि इस प्रकार गुह्य गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा। भगवान ने सिर्फ अर्जुन के लिए कहा, क्योंकि तू मेरा अति प्रिय है, इसलिए मैं तुम्हें हित की बात कहूंगा। क्या हित की बात कहते हैं भगवान? इस पर तुम विचार करना, ये सारी बातें जो बताई। अब भगवान कहते हैं इस पर तुम पूर्ण विचार करने के पश्चात तेरी जैसी इच्छा हो वैसे करो। भगवान इतना सुनाने के बाद भी फोर्स नहीं करता है। आज हम प्रैक्टिकल दुनिया में देखते हैं कि माता पिता होते अगर सही बात कहते तो बच्चों पर फोर्स लाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन भगवान कितना साक्षी है कि सारी बात गुह्य गोपनीय ज्ञान सुनाने के बाद क्या कहता है, अर्जुन तुम विचार करो और विचार करने के बाद तेरी जैसी इच्छा हो वैसे करो। कोई फोर्स नहीं, अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है, अथॉरिटी होने के बाद भी फोर्स नहीं करता है। ये भगवान कितना निरहंकारी है ना। परंतु मेरा चिंतन करने से, वायदा भी करता है, मेरा चिंतन करने से, मेरा अनन्य भक्त बनने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। ये भगवान का वायदा है, ये मेरा वचन है। भगवान प्रॉमिस करे उससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा, है ना। भगवान प्रॉमिस में बंध जाए। इसलिए हे अर्जुन, अब इस 18वें अध्याय में भगवान कहते सर्वधर्म परित्यज मामेकम शरणम रज, है ना। इसलिए हे अर्जुन सर्व धर्मों का परित्याग करके, जो दुनिया में दैहिक धर्म है ये सारे दैहिक धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। इससे बड़ा वचन भगवान का प्रॉमिस और क्या होगा ना? भगवान अगर सर्व पापों से मुक्त कर दे तो भगवान की शरण में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? कितना प्रॉमिस करता है। देखो कोई इंसान ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकता है, वो प्रॉमिस भगवान करता है। फिर और एक बहुत सुंदर बात यहां कही है कि ये गुह्य गोपनीय ज्ञान ऐसे पुरुष को कभी नहीं कहना जो आत्मसंयमी न हो, जो एकनिष्ठ न हो, जो भक्त न हो और जो भगवान से द्वेष करता है, ऐसे व्यक्ति को नहीं कहना। क्यों? क्योंकि उसके मुख से जो गालियां निकलेगी ईश्वर के प्रति, वो पाप जो करवाया, उसको बोलने का जो पाप करवाया वो हमने करवाया ना, इसलिए ऐसे पुरुष को नहीं कहो, कम से कम उसको पाप का भागी नहीं बनाओ। परंतु जो पुरुष मुझसे प्रेम करके इस गुह्य ज्ञान का उपदेश मेरे भक्तों को बताता है वह शुद्ध स्थिति को प्राप्त कर मेरे पास आएगा। इस संसार में उससे बढ़कर कोई अन्य सेवक न तो मुझे अति प्रिय है और न कभी होगा। भगवान का प्रिय बनने के लिए भगवान ने विधि बताई। जो इस पवित्र ज्ञान का अध्ययन करता है और श्रद्धा से सुनाता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती है। यह भी भगवान का वायदा है, ये भी भगवान का वायदा है कि ऐसे ज्ञान का अध्ययन करो, पवित्र ज्ञान है तो पवित्र ज्ञान का अध्ययन करो और श्रद्धा के साथ सुनो भी और सुनाओ भी, तो पापों से मुक्त हो जा करके उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती है। और तब अंत में इस 18वें अध्याय के अंत में भगवान कहते, संजय कहता है जो उसने देखा तो अपना अनुभव सुनाता है। हो सकता है आप सबका भी अनुभव यही रहा हो। तो संजय कहता है, इस प्रकार मैंने व्यास जी की कृपा से यह अद्भुत संदेश सुना जो मेरे शरीर को रोमांचित कर रहा है। जब मैं यह पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रतिक्षण गदगद हो उठता हूं। आप लोगों को यह अनुभव हुआ? हुआ अनुभव? गदगद हो उठता हूं और जहां योगेश्वर है वहां ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मैं मानता हूं। ये संजय ने कहा। और तब अंत में भगवान एक सवाल अर्जुन को पूछते हैं, अर्थात हम सब अर्जुन को पूछते हैं। क्या सवाल पूछते हैं? भगवान अर्जुन से पूछते हैं, क्या तुमने इस गुह्य ज्ञान को एकाग्रचित होकर सुना? सुना आप सभी ने सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? हो गया? संपूर्ण रूप से अज्ञान और मोह दूर हो गया? हो गया। अर्जुन ने यही कहा। फिर तो भगवान से जैसे अर्जुन ने वायदा किया वैसे वायदा करना पड़ेगा। अब अर्जुन का वायदा सुनो। हे प्रभु, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे स्मृति आ गई है। नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं। अब मैं दृढ़ हूं और आपके वचन का पालन करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो भगवान की आज्ञा को पालन करेंगे? करेंगे? हाँ, अर्जुन ने जैसा वचन दिया तो आप सभी भी देंगे ना, क्योंकि आप सभी अर्जुन हो। पहले दिन ही इसीलिए मैंने कहा कि यहां कौन बैठे हैं, सभी अर्जुन बैठे हैं ना। तो अर्जुन ने वायदा किया, मान आप सबने भी वायदा किया कि नहीं किया कि भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे, भगवान के ज्ञान का अध्ययन करके संशय रहित होकर। अब तो मन के अंदर कोई संशय नहीं है, कोई प्रश्न है या सभी प्रश्नों से पार हो गए हैं, प्रसन्नचित हो गए हैं? हाँ जी, हाँ, ये अभी हो रहा है ना, अभी हो रहा है, ये अभी चल रहा है ना। उस रूप से नहीं हुआ, जिस रूप से बताए गए हैं उस रूप से नहीं हुआ है। लेकिन जैसे आज एक बच्चा होता है ना, बैठिए, जैसे एक बच्चा होता है, मानो उस बच्चे को आपको एक मॉरल सिखाना हो कि बेटा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये बात अगर उसको सीधी उपदेश के रूप में दो तो जाएगी अंदर? नहीं जाएगी। तो उस बच्चे को समझाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक कहानी सुनानी पड़ती है। उस कहानी में एक सच का पात्र लो, एक झूठ का पात्र लो, और फिर कैसे सच का विजय होता है, झूठ का की हार होती है, ये सारी कहानी जो आपने उसको बता करके सुनाई, तो ये तो नहीं कहेंगे ये हुई नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में ये चल रहा है। तो चल रहा है उसी की ही एक दृष्टांत कहानी बनाई और उस बच्चे को मॉरल समझाने का प्रयत्न किया आपने, और वो कहानी उस बच्चे को जीवन भर याद रहेगी, और जब भी ऐसा अवसर आएगा वो प्रयोग करेगा, याद करेगा, हाँ मुझे ये कहानी बताई थी, सच का विजय होता है, झूठ का हार होती है। तो वो प्रयोग करेगा, करेगा ना। ठीक इसी तरह ये ऋषि मुनि जो थे, वो जब अपनी तपस्या की शक्ति से आने वाले कली काल को देखते थे तो देखते थे मनुष्य कितना घोर पाप कर्म होगा, कैसे तामसी प्रवृत्ति के होंगे, अब उनको बचाएं कैसे। तो उन्होंने एक कथा का निर्माण किया। कथा माना क्या, कहानी। इसीलिए कहते रामायण की कथा, महाभारत की कथा सत्य घटना है ये तो किसी ने नहीं कहा, कथा कही उसको। कथा माना एक कहानी जिसके अंदर मॉरल है। इसीलिए जो नाम है, तभी मैंने उस दिन आपको से सवाल किया था कि कौन मां बाप ऐसे होंगे जो अपने बच्चों के नाम दू से रखते होंगे। है कोई ऐसे मां बाप, हो सकते हैं, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति जिसके अंदर थी वो प्रैक्टिकल में इस समय समाज में है। तो ये ऋषि मुनियों ने ये मॉरल समझाने के लिए कि ऐसे चारों ओर आपके सामने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होंगे, उसमें आपको कैसे पांडवी वृत्ति वाले बनना है और उस कौरवी वृत्ति के ऊपर विजय प्राप्त करना है। तो जो अभी चल रहा है ये चीज उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से देखा था। इसलिए मनुष्य को गाइड करने के लिए ये कथा के रूप में बातें सामने रखी, पांडव और कौरव ऐसे पात्र लिए। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि हो रहा है, हो रहा है ना। तो ये तो नहीं कह सकते कि हुआ ही नहीं था, हो रहा है, उसको झुठला नहीं सकते हैं हम। लेकिन इसके अंदर जो भाव है उस भाव को ग्रहण करने की बात है। बाकी अगर उसको ग्रहण न करो और समझो कि ऐसा कोई व्यक्तित्व था और उनकी आपस में युद्ध हुई और लड़ाई हुई और ये अंधश्रद्धा हो गई, ये अंधश्रद्धा हो गई कि उसको ऐसे ही मान लेना और उसमें से कोई सीख अपने जीवन के लिए मुझे लेना ही नहीं, और फिर ऊपर से लोगों को कहना अरे उस समय भी ऐसा हुआ था, आज भी हो रहा है, उस समय भी ऐसा। तो ये वास्तव में इसी समय का दृश्य ऋषि मुनियों ने जब अपनी तपस्या की शक्ति से देखा तो पूरा उसका विवरण करके सामने रखा ताकि मनुष्य उसमें से गाइडेंस ले सके, जीवन शैली कैसी अपनी बनानी चाहिए वो ले सके, सीख उसमें से। इसीलिए ये कथाओं का की रचना की गई है। लेकिन आज के मनुष्य ने उसको जीवन में सीख नहीं लिया और सोचा हाँ होता है वो वैसे ही हुआ था। अब भगवान को हिंसक युद्ध की प्रेरणा थोड़ी देंगे, लेकिन एक सारा वृत्तांत जो उन्होंने लिखा कि जीवन में कैसे संघर्ष करना पड़ता है, हर व्यक्ति को कैसे संघर्ष करना पड़ता, उसका एक चित्रण ये कथाओं के रूप में किया। तो प्रैक्टिकल में हो रहा है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि नहीं हुआ था, हो रहा है, उसी का ही चित्रण उन्होंने किया हुआ था, है ना। लेकिन ये हम लोगों को उसमें से सीख लेने के लिए सारी बातें बताई गई है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ जी, हाँ हाँ। आध्यात्मिक चिंतन में जैसे आप अगर वहां जहां से भी आए हैं वहां हमारे सेंटर्स तो है ही है, तो वहां हर रोज माउंट आबू से यहां से प्रवचन जाता है कि जो ब्रह्मा बाबा साकार में थे उस समय जो प्रवचन चले थे वो सारा रिकॉर्ड्स है हमारे पास में, कैसेट्स के रूप में, सीडीज के रूप में, कंप्यूटर में उसके स्टोर है। तो हर रोज का प्रवचन उसको प्रिंट आउट निकालते हैं, क्योंकि जो बाबा के नए बच्चे आए हैं उन्होंने सुना नहीं है, जिन्होंने पुरानों ने सुना है उनको याद नहीं है, याद नहीं है किसी को, तो वो चीज को बार बार रिपीट करना जरूरी होता है ताकि पक्का हो जाए अपने अंदर। तो इसीलिए वो प्रवचन हर रोज यहां माउंट आबू से जाते हैं, जो यहां सुबह में पढ़ा जाता है वही सारे विश्व के अंदर एक ही डेट पर एक ही प्रवचन जो यहां चलता है वो सब जगह चलता है। जो हमारे 8000 सेवा केंद्र है, कोई भी सेंटर पर आप चले जाओ, उस जगह पर वही प्रवचन आपको सुनने को मिलेगा। इतना सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया हुआ है ताकि किसी का भी कोई प्रवचन अगर बाहर गांव गया, किसी और जगह पर गए तो मिस हो गए ये नहीं। हाँ, क्योंकि कहां पर भी वो जाएगा तो उसको वो सुनने को जरूर मिलेगा, है ना। तो ये हाँ प्रवचन होते हैं ना सबके। हम लोगों का प्रवचन माना जो परमात्मा के महावाक्य है उसको समझने के लिए सरल करके हम लोग बताते हैं, वो प्रवचन भी मिलते हैं। नहीं, वो क्या है, आज एक बच्चे को हम घर में ABCD सिखा सकते हैं ना, सिखा सकते हैं ना। ABCD कौन सी बड़ी बात है, फिर भी स्कूल क्यों भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? घर में सुनाने के लिए अगर बैठेंगे, घर में सुनाने के लिए बैठेंगे तो वो एकाग्रता नहीं बनती है, वो मन चित एकाग्र नहीं होता है। फोन आया, कोई मिलने आया, कहीं कोई बेल बजी, मोबाइल बजा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। स्कूल में इसीलिए भेजते हैं क्योंकि वहां एक माहौल मिलता है, एक वातावरण मिलता है, वैसा संग मिलता है, वैसी बातें मिलती है, तो उसकी सीखने की जो प्रक्रिया है वो तीव्र हो जाती है। तो क्योंकि मनुष्य का मन इतना चंचल है कि अगर वो घर में बैठ के करना चाहे तो नहीं होगा, क्योंकि वो वातावरण ही नहीं है घर में। तो कुछ समय आपको सेंटर्स का सहारा लेना पड़ेगा, वो स्कूल है, इसीलिए उसको हम कहते ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विद्यालय माना जहां पढ़ाई होती है, अंधश्रद्धा की बात ही नहीं है। और वहां जाकर उसको पढ़ करके आओ, फिर घर में उसको रिवाइज कर सकते हैं आप, होमवर्क की रीति से उसको रिवाइज कर सकते हैं। हाँ है ना, सब सब क्लासेस आपको मिलेंगे, जो भी क्लासेस चाहिए आपको क्लासेस मिलेंगे। माना उस परमात्मा के महावाक्य को और सरल करके उसको अच्छी तरह से समझाने के लिए, क्योंकि वो लैंग्वेज कभी कभी समझ में नहीं आती है, तो उसको समझाने के लिए जो भी भाई बहनों ने प्रवचन, मेरे हैं ऐसे नहीं, कई भाई बहनों के प्रवचन है, आपने यहाँ हमको सुना इसलिए आपको अच्छा लगा, लेकिन आप जहां भी सुनेंगे हमारी बहनों को, आपको लगेगा ये बहन तो इससे भी अच्छा बोल रही है, ये बहन तो उससे भी अच्छा बोल रही है। एक एक बहन के लिए, एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ जी भाई, हाँ है, सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा, हमारा भी मिलेगा, दूसरों का भी मिलेगा। हाँ? क्या लिखा है, हाँ हाँ बिल्कुल, श्री कृष्ण के 84वां जन्म जो नर का स्वरूप है उस रूप में है। वो तो भगवान ने गीता में ही कहा, मैं अति साधारण रूप में आता हूँ, मनुष्य स्वरूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते, तो स्पष्ट हो गया। इसीलिए मैंने पहले दिन ही कहा कि जैसे वो बच्चों का खेल कराते हैं ना, कि एक व्यक्ति को दूसरा मैसेज देने के लिए, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, जब तक हमारे पास आते हैं कई बातें चेंज हो जाती है उसमें से। ठीक यही हुआ है कि जो चीजें कही गई थी भगवान वाच, उसमें से समय अंतराल में कई चीजें परिवर्तित हो गई है, लेकिन भगवान के वो महावाक्य को हम निकाले। इसीलिए कहा हमने पहले दिन कि किसी के साथ मेरी चर्चा हो रही थी गीता के ऊपर, तो यही कहा कि जो ओरिजिनल श्लोक्स है गीता के वो सिर्फ दो दो लाइन के हैं, लेकिन जो बाद में एडिशन हुए श्लोक्स है वो दो लाइन में उसको फिट नहीं कर पाए, तो वो चार चार लाइन के हैं। वो इसीलिए क्योंकि भगवान ने बताया है कर्मों की गुह्य गति में, ये सीढ़ी के अंदर के कितने जन्म हमारे होते हैं, वो जन्मों को स्पष्ट किया गया। मैंने इसीलिए कहा आपको पहले दिन ही कि पहले दिन की गीता का ज्ञान लुप्त हो गया, वो वेद व्यास जी लिख नहीं पाए, दूसरे दिन के ज्ञान भी वो लिख नहीं पाया, जो तीसरे दिन का है वही हमारे पास है। तो जो आगे की बातें हैं वो तो है ही नहीं तो कैसे स्पष्ट किया जाए। तो वो जब तक परमात्मा खुद इस संसार में न आए तब तक तो वो बता नहीं सकता कि मैंने क्या कहा था, कितने जन्म है, कैसे जन्म है, वो मालूम ही नहीं किसी को। तो वो आकर के स्पष्ट करता है ना। और वो तर्क संगत है कि अगर हम अपने तर्क को चलाए, देखे, उसको एनालाइज करें तो सही है ना। ठीक है, एनालाइज तो करना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं। अंधश्रद्धा के आधार से हमें विश्वास भी नहीं करना चाहिए, हम तो यही कहते हैं। इसलिए हर बात को आप अपने तर्क की कसौटी पर कसकर देखिए, और आपका विवेक अगर उसको स्वीकार करे, जरूर अपनाइए जीवन के अंदर। बिल्कुल नहीं, ज्ञान माना ही विवेक, और उस विवेक को शार्पन करना जरूरी है ना। हाँ जी, हमें मदद करते हैं, बहुत हेल्प मिलती है, गाइडेंस मिलता है, और पुरुषार्थ में एक दिशा मिल जाती है कि किस तरह का हम आध्यात्मिक पुरुषार्थ करें। हाँ जी, और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो। हाँ, वो गीता में कहा है। हाँ बिल्कुल, हाँ, जिम्मेवार नहीं है। वो प्रकृति के दबाव में आकर के करता है, सात्विक राजसिक तामसिक, ये प्रकृति का प्रभाव तो है ना। तो जिस प्रभाव में व्यक्ति का स्वभाव है, जिस प्रकृति के गुणों का प्रभाव उसके स्वभाव पर है, ये भी गीता के अंदर कहा। दुर्योधन ने क्या कहा था? दुर्योधन ने कहा धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं। तो विवेक है ना, बुद्धि तो है ना उसके पास, तभी तो जानता। लेकिन क्या कहा, धर्म में पर चलने की शक्ति मुझ में नहीं है और अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तामसिक प्रकृति थी। इसीलिए और कोई प्रश्न हो? सब हो गया, सब प्रश्नों का समाधान? हाँ, प्रसन्न चित हो गए सभी? तो अभी मेडिटेशन करेंगे ना कल की तरह। हाँ कल की, हाँ जी बोलिए। हाँ तो यही तो बात है ना कि प्रत्यक्ष में वो है, प्रत्यक्ष में वो होते हुए वो देख सकते थे अपनी तपस्या की शक्ति से। लेकिन हाँ, कोई माँ बाप अपने बच्चों के नाम दुर्योधन तो नहीं रखेगा, दुशासन तो नहीं रखेगा। तो ये प्रतीकात्मक है ना सभी, तो ये प्रतीकात्मक है। तो इसीलिए कहा कि वो चीज उन्होंने देखी थी, उस चीज को एक पात्र के रूप में उन्होंने चित्रण किया और मनुष्य को एक मॉरल समझाना चाहा कि अगर इस तरह करेंगे तो भगवान से विपरीत हो जाएंगे, और विपरीत हो जाएंगे तो उसकी विनश्यन्ति होंगी। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए ये स्पष्ट कर दिया। तो गीता का ज्ञान साथ में जोड़ करके, महाभारत के साथ वो ज्ञान को जोड़ करके एक समाधान दे दिया। तो ये हो भी रहा है प्रत्यक्ष में, जो हो रहा है वो उन्होंने इतने सालों पहले देखा था। जैसे वो नॉस्ट्रोडेमस के लिए दिखाते ना कि गोले में उसने सब कुछ देखा और उसी आधार पर लिखा, तो इसी तरह हमारे ऋषि मुनियों को गोले में देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके अंतर चक्षु इतने पावरफुल थे कि उस अंतर चक्षु से आने वाले कलिकाल को देख लिया उन्होंने। और इसीलिए एक एक बुराई को भी एक पात्र के रूप में दर्शाया, एक एक अच्छाई को भी एक पात्र के रूप में दर्शाया, और किस प्रकार संघर्ष करना पड़ता है इंसानों को, ये प्रत्यक्ष में उन्होंने एक महाभारत की कथा के रूप में चित्रण करके लिख दिया ताकि मनुष्य समझ सके। लेकिन फिर भी जहां कलयुग ही बुद्धि पर बैठा हुआ है, वो कहानी आपको याद होंगी कि कलयुग की प्रवेशता होती है तब कहा जाता परीक्षित राजा का राज्य चल रहा था, और उस समय जब कलयुग ने दस्तखत दी राजा के द्वार पर, राजा ने दरवाजा खोला और पूछा कौन, तो कहा मैं कलयुग हूं। कहा क्या चाहते हो, तो कहा मेरा आने का समय हो गया है। तो राजा ने कहा मैं अपने राज्य में तो तुम्हें स्थान नहीं दे सकता हूं। तो कहा भाई मेरा तो समय आ चुका है, मेरे को थोड़ी सी जगह दे दो, उस कोने में मैं बैठा रहूंगा, है ना। तो राजा ने कहा अच्छा तुम्हें कौन सा स्थान चाहिए तुम बताओ, क्योंकि मैं अपने राज्य में तुझे नहीं दूंगा। तो कहा आपके महल में देगो। मैं महल में ही नहीं दूंगा तो कहां दूंगे। तो कहा मेरे अपने ऊपर तुम्हें कोई भी स्थान चाहिए, मैं तुम्हें कंट्रोल करके रखूंगा। फिर तो मुझ में तुमको कोई स्थान अगर दिखाई दे तो वहां बैठना के अनुमति चाहते हैं तो मैं तुम्हें अनुमति दे दूंगा। तो कहा आपके ताज में बैठना चाहता हूं। और वहां से ही बुद्धि घुमाना चालू किया उसने, आज भी यहीं बैठा है वो। कलयुग कहां बैठा है, कलयुग यहीं बैठा है ना, सबकी बुद्धि को घुमा रहा है ना। तो इसीलिए कहा कि बुद्धि को घुमा रहा है कलयुग और सबकी बुद्धि को ही भ्रमित कर रहा है। तो यही कलयुग की तो विशेषता है, वहां जो बिठा दिया उसने राजा ने, अब वहां से उठने का हटने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। जब तक उसका राज्य खत्म न हो तब तक तो वहां बैठा रहेगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल हट सकता है, तभी तो भगवान ने गारंटी ली है, वचन दिया है। ऐसे ही थोड़ी दिया है भगवान ने वचन, भगवान ने वचन दे दिया तो मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, सर्वधर्म परित्यज माम एकम शरणम रज, कह दिया ना। तो ये गारंटी ले ली भगवान ने कि ऐसे समय में भी अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो कलयुग मेरे साथ में नहीं रह सकता है, तो कलयुग चला जाएगा। कलयुग चला जाएगा तो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ जी बोलिए। बाबा भगवान ने बैड एलिमेंट्स नहीं बनाया, ऐसा है कि शरीर है, शरीर व्यक्ति का स्वस्थ होता है, जब बच्चा पैदा होता है स्वस्थ होता है, माँ बाप पूर्ण कोशिश करते हैं। कभी कोई माँ बाप ये चाहना रखते हैं कि मेरे बच्चे को कोई बीमारी हो, ठीक से खिलाएंगे पिलाएंगे, पौष्टिक भोजन खिलाएंगे पिलाएंगे, सब रीति से अच्छा भोजन घर का बना करके खिलाएंगे, खिलाते हैं ना आप सभी, है ना। लेकिन अगर बच्चे की कुछ जीवन शैली में ऐसी बातें आ जाती है, उसके शरीर के अंदर अगर वो ताकत के प्रति ध्यान नहीं देता है, इधर उधर की चीजें बाहर से खा लेता है, माँ बाप ने तो नहीं चाहा, हमेशा उसको अच्छी चीजें दी खाने के लिए, लेकिन वो बाहर से घर का भोजन ठीक से न खा करके इधर उधर की बाहर की चीजें खा लेगा, कमजोरी आ जाएंगी, कमजोरी आएंगी तो बीमारी, माना थोड़ा सा वातावरण परिवर्तन होगा, सर्दी जुखाम बुखार हो जाएगा ना। अगर वो बच्चा डॉक्टर के पास ले जाओ और उसको पूछो भाई मुझे ये सर्दी जुखाम बुखार क्यों हुआ, तो डॉक्टर क्या कहेंगे, आपकी फिजिकल रेजिस्टेंस पावर कम हो गई है, इम्यूनिटी कम हो गई है, इसीलिए बाहर के वायरस ने अटैक किया और आप उसके शिकार बने। सिंपल लॉजिक है ये तो, है ना। अब मुझे ही क्यों हुआ, परिवार के और सदस्य को क्यों नहीं हुआ, तो डॉक्टर यही कहेगा भाई आपकी फिजिकल इम्यूनिटी कम हो गई है क्योंकि आपने ठीक से भोजन नहीं किया, ठीक से आराम नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की, इसलिए ऐसा हुआ है। उसके लिए वो दो चीज देता है, एक एंटीबायोटिक एक मल्टीविटामिन, ताकि ज्यादा कमजोरी नहीं आनी चाहिए। एंटीबायोटिक देता है उस वायरस को खत्म करने के लिए, और फिर ऊपर से एडवाइस देगा कि तीन चीज करते रहो, ठीक से भोजन करो, हेल्दी फूड खाओ, दूसरा कहेंगे ठीक से आराम करो, कम से कम 6 घंटा आराम जरूरी है शरीर को, उतना आराम तो दो, ज्यादा ओवरलोड काम नहीं करो, और तीसरा कहेगा रेगुलर एक्सरसाइज करो, तो आपकी फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ठीक इसी तरह ये संसार के अंदर ये बुराइयां क्यों आई, ये मेंटल इम्यूनिटी की कमी हो गई। तो भगवान ने जब इस संसार को रचा था तो स्वर्ग था, स्वर्ग जैसा भरपूरता थी, सुख था, सब कुछ था, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते क्या हो गया कि हम अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में कहीं ना कहीं इधर उधर करते रहे, और जहां इधर उधर करते रहे मानसिक शक्ति जो है क्षीण होने लगी, और जैसे जैसे मानसिक शक्ति क्षीण होती गई, आत्मिक शक्ति के ऊपर उसका प्रभाव आया, आत्मिक शक्ति धीरे धीरे क्षीण हुई, तो ये बुराइयां का शिकार बनना स्वाभाविक है, बन ही जाते हैं, भगवान ने नहीं बनाया है। भगवान ने तो स्वस्थ देवता रूप में आपको भेजा था इस संसार में, जिसके ऊपर सिर्फ सात्विक प्रकृति ही थी, सात्विक प्रकृति का ही प्रभाव था, लेकिन धीरे 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 चलते 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 जैसे जैसे हम अपने नियमों से, अपने जीवन के सिद्धांतों से थोड़ा थोड़ा लूज होते गए, चलता है कोई बात नहीं, चलता है हो जाता है, ठीक हो जाएगा, उसको सम एक दो बार करने लगे तो फिर धीरे धीरे तो वो शक्ति क्षीण होनी है, और शक्ति क्षीण होनी है तो बुराइयों का प्रभाव, वो तामसिकता का, राजसिकता का प्रभाव होते होते आज संसार के अंदर तामसिक गुण का प्रभाव बढ़ गया है, सात्विक गुण का प्रभाव कम हो गया है। तो इसीलिए परमात्मा पुनः आते हैं, और पुनः आकर क्या करते हैं, यही एडवाइस देते हैं, तीन चीज करो, मन को भी आत्मा को भी अच्छा नरिशमेंट दो। आत्मा के लिए अच्छा नरिशमेंट कौन सा है, ज्ञान, आध्यात्मिकता, ये अच्छा नरिशमेंट है, पौष्टिक भोजन है। दूसरा आराम भी दो। अब मन के लिए आराम कौन सा है, रात को सो जाते शरीर नहीं सोता है, मन शरीर सो जाता है मन नहीं सोता है, मन तो स्वप्न में भटकता रहता है, तो मेडिटेशन माना मेंटल रिलैक्सेशन, तो आराम जरूरी है, ध्यान जरूरी है। जब से हमने ये ज्ञान और ध्यान को अपनी जीवन शैली से निकाल दिया ना, तब से ये बुराइयों का प्रभाव बढ़ गया। और तीसरा एक्सरसाइज भी जरूरी है, मन के लिए एक्सरसाइज कौन सी है, पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइजेस जरूरी है ना। आज लोगों के अंदर जागृति आई है, हाँ पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे भी माँ बाप को कहने लगते बी पॉजिटिव, डोंट थिंक नेगेटिव, कह देते माँ बाप को, लेकिन इट्स जस्ट फॉर एडवाइजिंग अदर्स, दूसरों को एडवाइस देने तक, खुद के लिए नहीं है। खुद के सामने अगर कोई परिस्थिति आ जाए और वो सामने वाला हमें याद दिलाता है कि अरे भाई हमें तो बड़ी अच्छी सलाह दे रहे थे कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, अब तुम्हारा क्या हुआ, तो हम क्या कहते, भाई मेरी बात अलग है, तेरी बात अलग है, तेरे केस में तो आज भी हम कहेंगे तुम नेगेटिव था, मेरा तो केस ही अलग है ना। वी नेवर एडमिट। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मनुष्य के अंदर अहंकार इतना है कि वो स्वीकार नहीं करता कि हाँ मैं भी नेगेटिव सोच रहा हूं, वो क्या कहता है उसको, मैं तो वास्तविक सोच रहा हूं, है ना, वास्तविक सोच रहा हूं। भावार्थ ये है कि इतनी भी शक्ति नहीं रही, मेंटल इम्यूनिटी नहीं है जो हम पॉजिटिव सोच सके, इसीलिए कहा पॉजिटिव सोचना चाहिए, सभी जानते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन सिर्फ एडवाइस देने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं, क्योंकि इनपुट है ही नहीं पॉजिटिव सोचने के लिए। नेगेटिव सोचना इतना नेचुरल क्यों हो गया है, क्योंकि सुबह उठते हैं सबसे पहला न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर से क्या मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव कॉलम्स अंदर के पेज में आती है, लेकिन मनुष्य की पढ़ने की रुचि कौन सी है? ऑल नेगेटिव। जब इनपुट ही नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या होगा और आउटपुट क्या होगा? इसीलिए भगवान कहते हैं कि अब सुबह सुबह, यहां तीन दिन आपको न्यूज़पेपर नहीं मिला, कोई कमरों में टीवी नहीं था, है ना, दुनिया में क्या हो रहा है पता ही नहीं, आपका दिन अच्छा गया कि नहीं गया? प्रसन्नता, डिड यू मिस समथिंग? के न्यूज नहीं पढ़ी, न्यूज नहीं देखी, माना हमने बहुत कुछ मिस कर दिया, ऐसा लगा आपको? हाँ, कि अच्छा रहा दिन, अच्छा। और सुबह सुबह से आपको पॉजिटिव नरिशमेंट दिया गया, पॉजिटिव इनपुट्स गया, और पॉजिटिव इनपुट गया तो प्रोसेस चला, आउटपुट रहा। क्या आउटपुट में गुस्सा आया किसी को? यहां तीन दिन में किसी को गुस्सा आया? हाँ, चिड़चिड़ापन आया हो, रेस्टलेस हो गए हो, टेंशन हो गया हो, अगर वहां से किसी ने फोन भी किया कोई बात समाचार तो भी क्या कहा? कोई बात नहीं, मैं आने के बाद देख लूंगा, यही कहा ना, कि चिड़चिड़ा हो गया आप? तो तीन दिन में आपने अनुभव किया कि इनपुट मिला तो प्रोसेस चला तो आउटपुट रहा। अब ये यहां तक ही रहेगा या वहां जाने के बाद भी कंटिन्यू होगा? क्या कहें? हम ये नहीं कहते न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो, हम ये नहीं कहते टीवी नहीं देखो, जरूर देखो पढ़ो, हा? लेकिन डोंट लेट इट बी द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह कुछ अच्छा नरिशमेंट दो अपने मन को, अच्छा पौष्टिक भोजन दो, फिर देखो आपकी जीवन क्या बन जाती है, कहां से कहां पहुंच जाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कितना नेचुरल हो जाता है, ठीक है ना? तो ये टेस्ट जो यहां किया है यहां तक न रहे, नहीं तो जैसे वो बच्चों के लिए सुनाते हैं ना, बच्चे जब गर्भ से बाहर निकलने वाले रहते तो क्या कहते हैं? वहां वहां, वहां की वहां, यहां की यहां, हाँ, वहां की बातें वहां, यहां की बातें यहां। तो ऐसा ऐसा नहीं करना, वहां वहां नहीं करना वहां जाने के बाद, के वहां जो सुना वो वहां, यहां की बातें यहां, नहीं। उस जीवन में भी अगर आपको शक्तिशाली बनना हो तो जरूर इसको अपने जीवन में एडिशन कर लो, तो फिर देखो बुराइयों के ऊपर अच्छाइयों की विजय कैसे होती है। भगवान ने भी अर्जुन को ज्ञान ही सुनाया, पौष्टिक भोजन दिया, मेडिटेशन सिखाया, और तब उसका पॉजिटिव थिंकिंग फिर चलना शुरू हुआ, है ना, और मोटिवेशन हो गया, आ गया। तो इसी तरह आप भी अपने जीवन को बनाइए, यही हमारी तो शुभ भावना शुभकामना है। हाँ हाँ, सर्वश्रेष्ठ तो परमात्मा ही है, परमात्मा से श्रेष्ठ तो कोई नहीं हो सकता है, हाँ, और उस परमात्मा के आप बच्चे हैं, राजा के बच्चे राजकुमार होते हैं, तो आप सभी कौन हो गए? हाँ, परमात्मा के बच्चे, परमात्मा के कुमार हो गए। बोलिए, हैं? ऐसा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, बाप का किया और बेटा नहीं भोगता है, हर एक अपने कर्मों का हिसाब किताब खुद भोगते हैं। भले जनरेशन खाए, हाँ, क्योंकि उस बाप के साथ भी आपके कर्मों का कहीं ना कहीं कनेक्शन है, कहीं ना कहीं कनेक्शन है, तभी आपने वही जन्म लिया, नहीं तो जन्म नहीं लेते थे आप। आपको, आपने उसको खिलाया होगा कोई जन्म में, तो उसने आपको खिला दिया। हाँ। बाकी जो हमारे कर्मों का रिकॉर्ड ट्रैक जो रखता है, चित्रगुप्त है, है ना? चित्रगुप्त माना सचमुच में कोई ऊपर स्वर्ग है और चित्रगुप्त बैठ के ये 700 करोड़ लोगों का हिसाब लेकर के बैठा हो, इतना बड़ा चौपड़ा लेकर के बैठा, ऐसा नहीं। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त यानी गुप्त रीति से जो चित्र निकाल लेता है वो हमारे अंदर ही है। हम जो कर्म करते हैं, जो कर्म करते, जो सोच चलाते हैं, कौन देखता है? इसीलिए लोग दुनिया में कहते हैं, भाई सारी दुनिया से छिप सकते, भाग सकते, लेकिन अपने आप से भागना, अपने आप से छिपना नहीं होता है। और वही लास्ट में सारा रिकॉर्ड पेश करते, क्योंकि उसने हर कर्म का एक चित्र निकाला है, एक फोटोग्राफी ली है प्रूफ के रीति से, और वो संस्कार रूप में अंदर समाता जाता है। और लास्ट में जब जाना होता है ना, तो भगवान के सामने वो सारा चौपड़ा सामने रख देता है, ये सारे फोटोग्राफ सहित, प्रूफ सहित मैं ले आया हूं, जिसके लिए हम इग्नोर भी नहीं, ये कर्म तो मैंने नहीं किया, ये शक्ल मेरे जैसी होंगी लेकिन ये मेरा नहीं है, ये नहीं कह सकते हम, है ना। तो चित्रगुप्त हरेक के अंदर है, और वो हरेक के अंदर जो बैठा हुआ है वो बहुत एक्यूरेट मेंटेन कर रहा है प्रूफ सहित, हाँ, ताकि धर्मराज, बड़ा जज तो वही है ना, सुप्रीम जज तो वही है, तो सुप्रीम जज के आगे सारे रिकॉर्ड्स खोल के रख देते हैं, वहां कोई वकील नहीं मिलेगा जो हमारी तरफ से लड़ने वाला हो, है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, रामायण का भी रहस्य है, लेकिन यहां तो अभी टाइम नहीं है, नहीं तो वो भी बता देते थे। फिर भी सीडी मिलती है, रामायण का रहस्य और गीता के रहस्य, दोनों की सीडीज अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी, है ना। और कोई प्रश्न? बस समाप्त हुए कि और भी किसी के है मन के अंदर कोई बात हो? समाधान ले लीजिए आज, यहां से संशय रहित होकर के जाना है, मन के अंदर कोई संशय लेकर के नहीं जाना है, है ना, एकदम क्लियर होकर के जाना है, ठीक है। हाँ जी बोलिए, हैं? कितना दिन चला ये लड़ाई? ये चल रही है ना लड़ाई, हर एक के जीवन में लड़ाई चल रही है, मैं बार बार वही तो कह रही हूं, है ना। परमात्मा ये गीता बता रहे हैं कलयुग के अंतिम समय में, और सत्युग आने तक वो बताएगा, चलता रहेगा ये ज्ञान तब तक। वो तो नेचुरल है कि जब कोई चीज का एक सैंपल होना होता है तो सैंपल तो थोड़े समय की अवधि का ही बताया जाता है। पहले दिन आपने सुनी थी बात मेरी, आप तो वही कह रहे कि सीता का हरण हुआ, फिर हरण की सीता कब हुई वापस, हाँ, सारी रामायण पूरी हो जाने के बाद वही सवाल पूछ रहे हैं, हा? सीता का हरण हो गया लेकिन हरण की सीता कब बन गई, हा? अच्छा, हाँ जी, कल लेक्चर लेना है तो रुकने के लिए तैयार है। अच्छा, अभी सबके लिए तो प्रैक्टिकल नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम यही सोचेंगे कि भाई और ज्यादा लेक्चर्स हो, ठीक है। हाँ जी, ऐसा है तो मेडिटेशन माना क्या है, मैं आपको यही बताती, हाँ, ऐसा है कि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो मेडिटेशन माना जब ईश्वर से अपने मन को जोड़ते हैं तो वो जो शक्ति हमें प्राप्त होती है वो आत्मा में जितना हम उसको धारण करते जाते वो वाइब्रेशंस के रूप में हमारे चारों ओर फैलती है। जितना हम मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं मेडिटेशन के अंदर, और वो पॉजिटिव ऊर्जा को अपने अंदर धारण करते, परमात्मा से जो ऊर्जा लेते हैं वो अपने अंदर धारण करते, तो हम अपने आसपास एक ओरा क्रिएट करते हैं। ओरा, आज की दुनिया के अंदर ऐसे कैमरास निकले हैं जो बताते हैं कि आपके आसपास कौन से कलर का ओरा है, पॉजिटिव एनर्जी का ओरा है या नेगेटिव एनर्जी का ओरा है। तो जितना हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ओरा बदलता जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव ओरा होने लगता है, और जितना पॉजिटिव ओरा हमारा होगा तो ये ओरा हमारे लिए कवच बन जाता है। मेडिटेशन क्यों करना चाहिए आज के युग के अंदर? क्योंकि उसी से ही हम ये पॉजिटिव ओरा को डेवलप कर सकते हैं, और ये पॉजिटिव ओरा जो देवताओं के आसपास हम एक लाइट के सर्कल के रूप में दिखाते हैं, ये ओरा है। और ये ओरा जब हम अपने आसपास क्रिएट करते हैं तो कैसे भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में अगर चले जाए तो वो नेगेटिव एनवायरनमेंट का प्रभाव उस पॉजिटिव ओरा को तोड़ नहीं सकता है और हमको इफेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमने मेडिटेशन द्वारा इसको विकसित नहीं किया तो बहुत जल्दी उसका प्रभाव में आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कई बुराई जो है इतनी इन्फेक्शियस होती है, जैसे गुस्सा, कोई गुस्सा कर रहा होता है इतनी इन्फेक्शियस होती है कि सामने वाला व्यक्ति गुस्सा न करना चाहे वो भी गुस्से में आ जाता है कि नहीं? तो इसीलिए ये इन्फेक्शियस होता है। लेकिन अगर हमारा पॉजिटिव ओरा स्ट्रांग है तो सामने वाला कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, लेकिन वो नेगेटिव वो पॉजिटिव ओरा को छेद करके अंदर अपने को इफेक्ट करे, ये नहीं हो सकता। इसीलिए आज के युग में मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। हाँ जी, ऐसा है कि उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं कि एक बार एक बेईमान था और एक बड़ा ईमानदार था। दोनों एक रास्ते से चल के जा रहे थे। अचानक रास्ते में किसी का बटुआ पड़ा था तो जो बेईमान था ना उसने तुरंत उठा लिया तो अंदर देखा हजारों रुपए पड़े थे, हजार रुपए की थोक पड़ी थी। बड़ा खुश हो गया। उसने वो दूसरे व्यक्ति को देखा जो ईमानदार था, पता नहीं था ये ईमानदार है, लेकिन जैसे ही उसको देखा उसने सोचा भाई उसने भी देखा मैंने भी देखा तो शेयर कर लेते। तो उसने उसको कहा देखो भाई इसमें 1000 रुपया है, हम दोनों बांट लेते, आधा आधा कर लेते, 500 तुम रख ले। दोनों ने देखा तो वो तो ईमानदार था तो उसने कहा कि देखो भाई जिसका ये पर्स गिरा होगा, हो सकता है आज उसका पगार हुआ हो, वो घर में पगार ले जा रहा हो, अब उसका गुम हो गया, कितना दुखी होता होगा, क्यों नहीं हम जाकर के उसको देख करके आते हैं, उसको मिल जाएगा, दुआएं देगा। तो वो बेईमान कहता है देख भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर उसके नसीब में होता था ना तो गिरता ही नहीं था, और गिरने के बाद यहां से कोई गया नहीं है, हम ही पहला व्यक्ति है उसके बाद, माना ये हमारे नसीब का है, इसको प्रसाद मान के स्वीकार कर लेना चाहिए मेरे मत के हिसाब से। अगर फिर भी आपको नहीं चाहिए तो मैं पूरा रखने के लिए तैयार हूं, है ना? वो ईमानदार ने कहा, उसने पुलिस में कंप्लेन लिखवाई होगी, अगर मिल जाएंगे तो खुश होगा। कहा देख भाई पुलिस में अगर देने गए, लेकिन अगर उसके नसीब में नहीं है तो वो पुलिस वाले आपस में बांट के खा लेंगे, है ना? तो मैं क्यों देने जाऊं, तुमको नहीं चाहिए मैं रखने के लिए तैयार हूं। ठीक है आप रखो, मुझे तो नहीं चाहिए, ईमानदार ने मना कर दिया। अब थोड़े आगे गए तो जो ईमानदार था ना उसको इतना जोर से पैर में कांटा लगा, इतना खून निकलने लगा, जोर से उसके अंदर से एक जैसे चीख निकल आई। तो बेईमान ने देखा, बेईमान ने कहा देखा बड़ी ईमानदारी की बातें कर रहा था ना तभी ये कांटे लगते हैं, बेईमानी से जियो तो पर्स मिलेगा, ईमानदारी से जिएंगे तो ये कांटे लगेंगे, ये आज का दृश्य है ना, ये आज का हाल है और आज की मेंटेलिटी मैं आपको बता रही हूं। अब ये दृश्य, ऊपर से कुछ देवताएं वहां से गुजर रहे थे, देवताओं ने देखा कह रहे ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। जो ईमानदार है उसको पर्स मिलना चाहिए, जो बेईमान है उसको कांटा लगना चाहिए, तो उल्टा हो रहा है, लगता है चित्रगुप्त कुछ गड़बड़ कर रहा है ना। तो वो सारे देवताएं मिलकर भगवान के पास गए और भगवान से कहने लगे कि भगवान सारा अनर्थ हो रहा है पृथ्वी के ऊपर। तो कहा क्या अनर्थ हो रहा है? अरे भगवान को कहे ये दोनों व्यक्ति जो है इसमें एक बड़ा बेईमान है, ये बड़ा ईमानदार है, लेकिन ये बेईमान जो है ना उसको पर्स मिल रहा है, ईमानदार जो है उसको कांटे लग रहे हैं, ये उल्टा कहां से चलने लग पड़ा, लगता है चित्रगुप्त हिसाब किताब ठीक नहीं रख रहा है। भगवान ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता है, चित्रगुप्त बड़ा एक्यूरेट है हिसाब रखने में। कहा ठीक है, बुलाइए उसको। चित्रगुप्त को बुलाया गया, बोला दोनों का रिकॉर्ड लेके आओ। दोनों का रिकॉर्ड लेकर के आया तो देखा गया कि जो ईमानदार था वो पहले बड़ा बेईमान था, और उसकी बेईमानी के कारण उसको इतनी कड़ी सजा मिलने वाली थी, इतनी दर्द भरी भोगना का अनुभव करना था। लेकिन फिर भी भगवान को कहा जाता रहम दिल, वो सजा देने से पहले फिर भी उसने एक अवसर दिया सुधरने का उसको, कि देखे एक अवसर देते हैं लास्ट चांस सुधरने के लिए, सुधरता है कि नहीं सुधरता। और सचमुच वहां से सुधर गया वो, और सुधर करके इतनी ईमानदारी से चलने लगा, वो सारी सजा जो थी धीरे 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 कम होते 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 खाली एक कांटा चुभने जितना दर्द रह गया था। तो ये कांटा जो चुभा ये उसकी ईमानदारी का फल नहीं था, उसकी बेईमानी का इतना ही बचा था। और जो बेईमान था उसका रिकॉर्ड निकाला, वो पहले बड़ा ईमानदार था, और उसकी ईमानदार के फल स्वरूप उसको महल माड़िया धन दौलत खूब मिलना था उसको, लेकिन देने से पहले भगवान ने भी उसकी अंतिम परीक्षा लेनी चाहिए, देखिए उसकी ईमानदारी रखता है या छोड़ देता है। और वहां से उसने छोड़ दिया, एकदम बेईमान हो गया। अब बेईमान हो गया, इतनी बेईमानी से बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, है ना। तो वो सारा जो धन माल मिलना था उसको कम होते 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 सिर्फ 1000 रुपया बचा था। ये 1000 रुपया उसकी बेईमानी का नहीं था, ईमानदारी का इतना ही फल था, बेईमानी का तो अभी बाकी है। इसलिए आज दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हैं सही नहीं है। ये नहीं कि बेईमान मौज मस्ती कर रहा है, ईमानदार दुख भोग रहा है, नहीं। बेईमान कहो उसको, मान सम्मान रिस्पेक्ट इज्जत मौज मस्ती जो कर रहा है वो, ये उसकी बेईमानी के कारण नहीं है, उसका कोई जन्म का पुण्य जो उदय था उसका मिल रहा है उसको। लेकिन जैसे ही ये समाप्त होगा उसके बाद जो भोगना शुरू होगी ना, वो तो अभी बाकी है।
क्या 3 दिन से राजयोगी उषा बहन जी को सुन रहे हैं, गीता का सीक्रेट फॉर आप सबने सुना, मैं समझता हूँ आप सबको अच्छा लगा, तो किस तरह से इनको धन्यवाद दिया जाए। खड़े हो प्लीज, सब खड़े होइए, और जितना अच्छा लगा उतने गड़गड़ाहट के साथ में ताने बजाइए, गड़गड़ाहट के साथ में सारा ये ज्ञान सरोवर गूंज जाए। धन्यवाद, ओम शांति। दो मिनट का मेडिटेशन।
खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा, हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा, हम खुश नसीब कितने प्रभु का। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा।